पृष्ठ संख्या 33, राकेश की रचना दृष्टि और नाटक। कहने की आवश्यकता नहीं कि राकेश का निजी व्यक्तित्व उनके साहित्यिक व्यक्तित्व से अलग नहीं है। उनका पूरा स्वभाव, सोचने का ढंग, कार्य व्यवहार यानी संपूर्ण दृष्टि और गति उनके साहित्य में देखी जा सकती है। साहित्य में भी वह किसी निश्चित विचारधारा को लेकर नहीं चलते, न काल्पनिक सड़कों पर आते जाते, किन्हीं अमूर्त आकृतियों से वह अपना वैचारिक संबंध स्थापित करते चलते हैं। वह जब यह कहते हैं कि किन्हीं बौद्धिक निष्कर्षों या फॉर्मूलों के आधार पर दो या दो का योग करने से कलाकृति की रचना नहीं होती, तो उनका मतलब बहुत साफ होता है। रचना का संबंध उसका जन्म किसी तीव्र अनुभूति से ही होना चाहिए। अपने मन की तरंगों के अनुसार चलते रहने वाला वह यायावर अपने लेखन में भी, साहित्य में भी कहीं प्रतिबद्ध नहीं है। अगर है तो अपने लेखन और उसकी ईमानदारी के प्रति, ईमानदारी जो अनुभवों के विस्तार और गहराई से पैदा होती है। इसके लिए अंतिम दिन तक जिंदगी से जुड़े रहना एक आंतरिक अनिवार्यता है। जिंदगी उसके लिए एक ऐसी ठोस वास्तविकता है जिससे निरंतर जूझते रहना और उसमें से रास्ता निकालते रहना साहित्यकार की पहली शर्त है। जीवन को वह उसके रचते बदलते परिवेश में देखना चाहता है, केवल कुछ स्थितियों में ही नहीं, और वह भी एक तटस्थ दृष्टि की तरह नहीं, कुछ लेखकों की तरह। राकेश को अपने ही किन्हीं मानव मूल्यों से मतलब नहीं है, इसीलिए आधुनिकता, समकालीन, प्रयोगात्मक जैसे शब्द उसे अस्थायी, सतही लगते हैं। तात्कालिक प्रतिक्रियाओं में उसे विश्वास नहीं है, सत्य को ग्रहण करने और स्वीकार करने में है। अपने को बहुत स्पष्ट करते हुए राकेश ने कहा है, मैं व्यक्तिक और साहित्यिक दोनों स्तरों पर अपने को जिंदगी से जुड़ा हुआ पाता हूँ, पर जुड़े होने का अर्थ जिंदगी की सब परिस्थितियों को स्वीकार करके चलना नहीं है। जिंदगी में बहुत कुछ है जिसके प्रति विद्रोह और आक्रोश मेरे मन में है, पर वह सब जिंदगी के ऐतिहासिक उफान के अंतर्गत आता है। इस विद्रोह और आक्रोश की ही कुछ परिस्थितियां हैं जिनमें मैं कई बार अपने को अकेला भी पाता हूँ, पर यह अकेलापन जूझने की एक स्थिति है, किसी तरह का अलगाव नहीं। यह जिंदगी से अकेला होना नहीं है, जिंदगी के बीच अकेला पढ़कर अपने जुड़े होने का निर्वाह करना है। इसी मायने में यह अकेलापन असामाजिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि समाज के बीच जीकर इस अकेलेपन को राकेश ने स्वयं चुना है। बहुतों में रहने के कारण बहुतों के बीच से पैदा हुआ वह अकेले होने का प्रयत्न बहुतों के साथ अपने को संबद्ध सूत्र की ही तो उपज है, और इसीलिए कदापि वह संबंध सूत्र से मुक्त नहीं। संदर्भ एक, परिवेश, अनुभूति से अभिव्यक्ति तक, पृष्ठ संख्या 178, दो, परिवेश, पृष्ठ संख्या 157। पृष्ठ संख्या 34, राकेश की लगभग सभी कहानियां, उपन्यास और नाटक भी इसके प्रमाण हैं कि मनुष्य और जीवन यथार्थ को उसकी सामाजिक परिस्थितियों के परिपार्श्व में परखने आंकने का आग्रह राकेश में बराबर रहा, भले ही उनका रचना क्षेत्र बहुत व्यापक न हो। एक प्रकार की आइडियालॉजी राकेश की प्रारंभिक कहानियों में जरूर है, जिसे उन्होंने स्वयं ही स्वीकार किया है, लेकिन बाद में वह आवेश, चुभन, व्यंग, भावुकता कम और समाप्त होती गई। उन्हें लगता है कि सामने जिंदगी की किताब खुली हुई है जिसके पन्ने अपने आप पलटते जा रहे हैं। सचमुच राकेश ने तेजी से बदलती हुई परिस्थितियों, बदलते आदमी, बदलते जीवन मूल्यों को जीवन की नई धड़कनों को सुना जाना, मानव संबंधों को इतना बदलते हुए देखा कि उसके विश्लेषण में अपने को सभी तरह की भ्रांतियों से, भावनाओं, आदर्शों से मुक्त किया। जीवन के बदलते मान मूल्यों ने राकेश को व्यापक यथार्थ दृष्टि दी। उनकी आस्था भी अनास्था भी इसी यथार्थ बोध का परिणाम है। अनुभूति के मार्ग में आने वाला छोटे से छोटा क्षण और मनुष्य उन्हें छूता है। कहानियां ही नहीं, उनकी डायरी के पृष्ठ भी इसका प्रमाण है कि हर छोटी से छोटी सामान्य घटना, वस्तु, दृश्य या स्थिति को वह कितनी सूक्ष्मता से पकड़ते हैं और सब में या सबके आधार पर कुछ सार्थक मानवीय खोजना चाहते हैं। चाहे वह लुधियाना स्टेशन की रात हो, चाहे शिमला का मिशनरी स्कूल, चाहे आगरे का ताजमहल, चाहे दिल्ली की उत्तेजित सड़कें या कॉफी हाउस। राकेश के लिए साहित्य में यथार्थ कोई नया प्रकरण नहीं है, वह जड़ भी नहीं है, गतिशील यथार्थ है जो बदलता रहता है समय के साथ साथ। इसीलिए यथार्थ को पकड़ने के लिए अनुभव की परिधि को फैलाना भी जरूरी है। कृति के लिए अनुभव की सर्वोपरि महत्ता को अज्ञेय की तरह राकेश भी मानते हैं। यथार्थ की प्रतिक्रिया से ही तो अनुभूति पैदा होती है। निराला की अनुभूति उनके भोगे हुए यथार्थ के ही कारण है। पंत बाह्य परिवेश से, जीवन के व्यापक संदर्भों से कटे और अंतर्मुखी हैं, इसीलिए उनमें वह अनुभूति नहीं है। इसीलिए यह जानना पड़ेगा कि अनुभूति की व्यापकता और गहराई यथार्थ की व्यापक और गहरी पकड़ पर ही निर्भर करती है। जहाँ अनुभव कम होता है, वहाँ यथार्थ केवल बौद्धिक रूप में होगा और लेखन प्रभावहीन और अस्थायी। राकेश में यथार्थ की परख जितनी गहरी होती गई है, उनकी रचना दृष्टि में उतनी ही अधिक प्रामाणिकता भी आती गई है। यथार्थ की इस पकड़ और प्रामाणिकता के कारण क्रमशः उनकी भाषा और अभिव्यक्ति में भी एक परिवर्तन आता गया है। आषाढ़ का एक दिन से लेकर छतरिया तक यह रचना दृष्टि स्पष्ट लक्षित होती है। राकेश के लिए कोई भी रचना जीवन के परिस्पंदनों की अभिव्यक्ति है। इसीलिए सबसे पहले वह समाज यथार्थ पूरा बाहरी परिवेश अपनी चेतना से संपृक्त रखते हैं और किसी न किसी व्यक्ति या चरित्र को अपना माध्यम बनाकर उस समूचे सामाजिक यथार्थ को, अपने युग के मानव के अंतर्द्वंद को, पीड़ा को अभिव्यक्त करते हैं। पृष्ठ संख्या 35। ऐतिहासिक पौराणिक कथानकों में भी वह इसी दृष्टि को लेकर चले हैं। छोटे से छोटे बीज नाटकों में भी केवल दो पात्रों के माध्यम से, केवल स्त्री पुरुष के संबंधों की विडंबना को ही नहीं, आज के समाज में व्याकुल मनुष्य टूटते बिखरते मानवीय संबंधों से उत्पन्न एक कचोट बिखराव व्यक्त हो सका है। अपने एक निबंध में वह कहते हैं कि केवल कुछ मूर्त रूपात्मक आकृतियां ही यथार्थ नहीं हैं, उन मूर्त रूपात्मक आकृतियों के ह्रास और विकास की प्रक्रियाएं भी यथार्थ हैं। ये परिस्थितियां भी यथार्थ हैं जो ह्रास और विकास का कारण बनती हैं। जाहिर है कि यथार्थ को व्यापक दृष्टि से देखा गया है। यद्यपि आरंभिक कुछ कहानियों को छोड़कर उन्होंने धीरे धीरे यथार्थ के चित्रण या परिस्थितियों के चित्रण के आधार पर केवल बाह्य परिवेश और वातावरण को ही मूर्त नहीं करना चाहा, बल्कि उस समाज या व्यवस्था में रहने वाले व्यक्ति के संघर्ष को, घुटन को, उसके निरंतर बदलते जाते दृष्टिकोण को अधिक चित्रित किया है। उनके सभी नाटक, बल्कि पूरा साहित्य, इसी अंतर्निहित यथार्थ का सांकेतिक चित्र प्रस्तुत करता है। राकेश का साहित्यिक व्यक्तित्व व्यापक संदर्भों की पकड़ और पहचान में, समाज में रहते व्यक्ति के अंतर्मन को सही रूप में जानने और संप्रेषित करने में ही महत्वपूर्ण है। वह अपने को लेखक रूप में कहीं भी दूसरी इकाइयों से स्वतंत्र और निरपेक्ष मानने को तैयार नहीं है। चेतना के स्तर पर हर आदमी अपनी जगह एक है। अकेला हालांकि वहां भी नहीं, पर बोधक के स्तर पर वह किसी भी तरह एक या अकेला नहीं है। बोध में वह प्रभावों को समेटता है, प्रभाव संदर्भ है, और संदर्भों में आते ही व्यक्ति की चेतना उनसे निर्धारित होने लगती है। निर्धारित होना ही उसका वास्तविक समय बोध है। इसीलिए तथ्य जो भी है वह किसी अकेले व्यक्ति का नहीं, हमारे समय का है। इसीलिए राकेश के नाटकों में, बल्कि पूरे साहित्य में, निश्चित आरंभ अंत, एक खास थीम, कथानक का विभाजन, परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण या पात्रों का यथार्थ रूप देखना उनके साहित्य के प्रति बेईमानी होगी, क्योंकि इस तरह के फॉर्मूलों वर्गों में वह बांटा ही नहीं जा सकता। ये सब चीजें बहुत दूसरी हैं जिस व्यक्ति के लिए वृंदावन गार्डन की हर चीज का सम विभाजन संतुलित होना ही अस्वाभाविक है। उसकी रचना में भी सम विभाजन की कल्पना करना निरर्थक होगा। उनके सारे कथा साहित्य और नाटकों में प्रथम चीज है अनुभव, जिसका विस्तार होता गया है। राकेश को भी सूक्ष्म अनुभूतियों, संवेदनाओं का साहित्यकार कहना ज्यादा उचित होगा। समकालीन जीवन के स्वर उनके साहित्य में सुने जा सकते हैं। अनुभूति को काफी साफ करते हुए राकेश ने कहा है, मेरे लिए अनुभूति का सीधा संबंध मेरे यथार्थ से है, और यथार्थ है मेरा समय और परिवेश। व्यक्ति से परिवार, परिवार से राष्ट्र, और राष्ट्र से मानव समाज तक का पूरा परिवेश। संदर्भ एक, परिवेश, समय और यथार्थ के शिल्प में, पृष्ठ संख्या 198। पृष्ठ संख्या 36। मैं इनमें से किसी एक से कटकर शेष से जुड़ा नहीं रह सकता। अपने पास के संदर्भों से आंख हटाकर दूर के संदर्भों में नहीं जी सकता, क्योंकि संदर्भ बदलते रहते हैं, जीवन की संभावनाएं बढ़ती रहती हैं। इसीलिए एक ही लेखक की रचना भी बदलती रहती है, साहित्य की संभावनाएं भी बढ़ती रहती हैं। अपने परिवेश में जीने वाला व्यक्ति और उस परिवेश की गतिशीलता को महसूस करने वाला व्यक्ति लेखक अपने को कभी दोहराएगा नहीं। राकेश के स्वभाव में वैसे दोहराना है ही नहीं, उसके लिए खुशियां दोहराई नहीं जा सकती। लेकिन जहां तक उनके नाटकों का संबंध है, उनमें अनुभूति और यथार्थ की प्रधानता होते हुए भी ऐसा जरूर लगता है कि उन्होंने अपने हर नाटक में अपने कुछ खास अनुभवों को कुछ हेर फेर के साथ दोहराया है। यूं साहित्य में निरंतर नवीनता, नए प्रयोग, हर बार भिन्न रूप और नया प्रयत्न राकेश की मौलिकता, विशेषता है। लेकिन यह नवीनता या प्रयोग या रूप बंध कहीं से खोज कर लाया नहीं गया है। लेखकों की भी भिन्न भिन्न दृष्टियां, रुचियां हुआ करती हैं। कुछ शिल्प को महत्व देते हैं, शिल्प के नए नए प्रयोग ढूंढ लाने में ही रचना की सार्थकता समझते हैं। लेकिन कुछ रचना के आंतरिक सौंदर्य से ही उसके शिल्प को घटित होने देते हैं। राकेश के लिए शिल्प प्रमुख नहीं है, रचना की मांग स्वतः ही उसके फार्म को बनाएगी। फार्म के आधार पर रचना को गढ़ना नहीं होगा। राकेश के साहित्य को गहराई से पहचानने के लिए यह आवश्यक है कि हम उसकी रचना दृष्टि को समझें। अनुभव और अंतर्निहित यथार्थ उनके लिए जितना मुख्य है, रचनात्मक दृष्टि से कलात्मक या रूपात्मक प्रयोग उतने ही गौण हैं। दूसरी बात यह है कि कला शिल्प अभिव्यक्ति को वह अनुभूति से नहीं मानते। प्रसाद ने माना ही था कि अनुभूति अगर सुंदर होगी तो अभिव्यक्ति सुंदर होती है। राकेश का भी कहना है कि कला के शिल्प को कला की वस्तु या कलाकार की अनुभूति से अलग करके देखना भी मुझे गलत लगता है, क्योंकि अनुभूति का अपना ही एक शिल्प होता है, जिसकी अपने माध्यम की सीमाओं में हर कलाकार खोज करता है। हर युग की वास्तविक कला अपने युग कथ्य को अपने में समेट कर चलती है और उसी के अनुसार अपने अंदर से अपने शिल्प का विकास करती है। इसीलिए शिल्प को तराशने या बदलने की बात सवाल बनकर मेरे सामने नहीं आती, सामने आती है यथार्थ और उसकी अनुभूति को उसके अपने शिल्प में व्यक्त करने की बात, जो कि हर एक के लिए हर बार एक नई चुनौती हो सकती है। एक लेखक का शिल्प के संबंध में यह कथन उसके मानसिक विकास, आत्मविश्वास और आंतरिकता की तह तक पहुंचने की कोशिश का उदाहरण है। कलागत मूल्यों को जीवन से अलग मानकर चलना रचना की संभावनाओं को अवरुद्ध कर देना है। यही कारण है कि राकेश ने महज चौंकाने वाले या ध्यान आकर्षित करने वाले या पश्चिमी प्रभाव से आने वाले शिल्प प्रयोग नहीं किए हैं। संदर्भ: एक, परिवेश, समय और यथार्थ के शिल्प में, पृष्ठ संख्या 203। दो, वही, पृष्ठ संख्या 203।